गेला कोरा नटराज एक काले कोथा गेला कोरा नटराज पाषाणे कुटीब माथा अनले पाशिब पाषाणे कुटीब माथा अनले पाशिब गौरांगा गुनेरा निधि कथा गेले पाब गौरांगे गुनेरा निधि कथा गेले पाब से सबा संगीरा संगे जे कैला विलास से संग न पाया कांदे नरोतम दास से संग न पाया कांदे नरोतम दास हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai go Haribo, 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 Gora Haribo. Jaya Vishwapath, Vahmu Prachacharya, Ashtotar, Shri Shri Shimad Bhakti Vidhan, Swami Shri Prabhupada ki jai. Anand Kori Vaishnavid ki jai, Namacharya Shri Hridayanand, Sam ki jai, Prem se kaho, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advait Gadadhar Shivasadi Govhat ki jai, Shri Shri Radha Rai Karmanji ki jai, Shri Shri Krishna Balaram ki jai, Shri Shri Kaunitaya Jagannath Baldev Subramaran ki jai. Jai Go Premanande, all glorious assembly bodies, Hare Krishna, all glorious assembly bodies, Hare Krishna, all glorious assembly bodies, Hare Krishna. All glorious, all glorious, Shri Shri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा. सो आज बहुत ही पवित्र दिवस है. हम कार्तिक के अंतिम स्तर पर हैं. पीष पंचक का भी आज शुभारंभ है और विशेष रूप से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का भी आज तिरुभाव दिवस है. तो आज हम प्रॉपर लीला से भी पाठ, लीला में से भी पाठ करेंगे, पीष पंचक के बारे में बताएंगे और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के बारे में भी आज चर्चा करेंगे. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुं विमृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश्व गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnupadaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Shrimate Bhakti Vedanta, Swami Niti Namine, Namaste Sarasvate Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Pashyate Deshatarine. हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही पवित्र दिवस है, गौर कुशोस दास बाबा जी महाराज का आज तिरुभाव दिवस है, और मैं इस वैष्णव सॉन्ग का एक मीनिंग पढ़ लेता हूँ, इसके बाद हम आज चर्चा करेंगे। अहो जो अप्रकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे आचार्य ठाकुर श्रीनिवास आचार्य कहाँ चले गए। मेरे शील स्वरूप दामोदर, शील रूप सनातन तथा पतितों के पावन करने वाले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं। मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान नर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब एकाएक कहाँ चले गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस इन सब का वियोग में कैसे सहूँ। मैं अपना सिर पत्थर से पटक कर या आग में प्रवेश कर जाऊँ। गुणों के भंडार श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर श्री नरोत्तम दास ठाकुर केवल विलाप कर रहे हैं। तो आज गौर कृष्ण बाबू जी महाराज का तिरुभाव है, तो आज इनके ऊपर पहले हम चर्चा करेंगे, फिर भीष्म पंचक के ऊपर कुछ बताएंगे, और फिर प्रभुपाद लीला में से कुछ पाठ करेंगे। तो समाधि बुक और बाबू जी महाराज की बायोग्राफी से हमने जो पढ़ा कि पहले बाबू जी महाराज गृहस्थ आश्रम में थे, फिर उनके पत्नी के देहांत होने के बाद वो वृंदावन में आके रहने लगे, और कम से कम 30 वर्षों तक उन्होंने वृंदावन में एक पेड़ के नीचे बैठकर वहाँ पर उन्होंने रोज 128 माला का जप करते थे। और तो इस प्रकार 30 वर्षों तक वो वृंदावन में रहे, और वहाँ पर इनका जो वैराग्य था वो रूप और सनातन समान ही था, और वहाँ पर कुछ भी जो फटे पुराने कपड़े थे उसी को पहन के रहते थे, गंगा की मिट्टी को यमुना की मिट्टी को ही खाते थे, या फिर बहुत ज़्यादा होता तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा यमुना में थोड़े से चावल मिला के उसी को उबाल के वही खा लेते थे। और अपने शरीर का कुछ ध्यान नहीं था, लेकिन सारा दिन गौरांग प्रेम या कृष्ण भजन में लीन रहते थे। और तो 30 वर्षों के बाद फिर उनको ऐसा एक स्वप्न आया जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब आप नवदीप में वास कीजिए, और 30 वर्षों के बाद अब वो नवदीप में रहने लगे, और नवदीप में कुलिया ग्राम के पास वहाँ पे रहने लगे, और वहीं पर ही अपना भजन करने लगे। तो जब उन्होंने देखा कि सामान्य जनता उनको बहुत परेशान करती है, क्योंकि बार बार वो आशीर्वाद के लिए उनके पास आते थे, तो उनसे बचने के लिए वो क्या करते थे, एक पब्लिक टॉयलेट में जाके अपने आप को लॉक कर लेते थे और वहीं पर भजन करते थे। कई बार लोग उनको सरकारी अधिकारी भी कहते थे, अगर आपको भजन ही करना है, कृष्ण का नाम का जप ही करना है, तो हम आपके लिए पास में कुटिया बना देते हैं, आप वहाँ पे आराम से रहिएगा। तो कहते हैं ये जगह ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे उस जगह से जहाँ पे मुझे भौतिक लोगों का संग करना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा अपने आप को भौतिक संग से बचाए रखते थे। और वहाँ पर एक बार एक ऐसे कोलकाता का एक डॉक्टर आया, और वह बाबा जी महाराज के पास एक आशीर्वाद मांगने आया कि मैं यहाँ पर एक क्लिनिक खोलना चाहता हूँ, ताकि जो यहाँ पे लोगों को मैं फ्री में इलाज कर सकूं। तो बाबू जी महाराज ने कहा कि क्लिनिक बाद में, अभी खोलने की ज़रूरत नहीं है, अभी यहाँ पे आप सब कुछ छोड़ कर यहीं पे आइए, यहाँ पे भजन करिए, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी प्रकार कई लीलाएं की नवदीप में। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक गृहस्था कपल ऐसे आए उनके पास, तो उनसे पूछ रहे थे किस प्रकार हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो बाबू जी महाराज ने बहुत महत्वपूर्ण उनको निर्देश दिए और कहा कि ये माना चाहिए कि जो पति है वो पत्नी की सेवा करे, यानी कि पत्नी मेरी दासी है, और जो पत्नी है वो भी पति की सेवा करे, और इस प्रकार का गृहस्थ आश्रम रहेगा और आपस में सेवा का भाव रहेगा, तो जीवन में दोनों ही पूर्णता प्राप्त करेंगे। और तो जब नवदीप में थे तो बाबूजी महाराज प्रत्येक दिन जाया करते थे स्वानंद सुखन कुंज में, और वहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर की भावतम कक्षा को सुना करते थे बहुत ही आदर के साथ। और ऐसे भी बताया जाता है कि कभी कभी गौरकृष्ण बाबूजी महाराज भक्तिनाथ ठाकुर जो तब तक नहीं थे, जब तक दीक्षित नहीं हुए थे, उनकी कक्षा में बैठ के भी उनसे श्रवण करते थे। और फिर ऐसा आग्रह करने पर भक्तिनाथ ठाकुर जी के अपने पुत्र बिमला प्रसाद को उन्होंने आग्रह किया कि आप इनसे दीक्षा ग्रहण कीजिए, ये उपयुक्त व्यक्ति हैं आपको दीक्षा देने के लिए। तो फिर बिमला प्रसाद गए गौर किशोर साहब जी महाराज के पास दीक्षा प्राप्त करने के लिए। तो शुरू में तो उन्होंने मना किया कि मैं दीक्षा नहीं दे सकता, और फिर भक्तिनाथ ठाकुर ने भी गौर किशोर बाबू जी महाराज को कहा कि आप इस जो प्रपोजल है इसको आप थोड़ा ये निवेदन कर रहे हैं इनको आप स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने दोबारा सोचना शुरू किया कि ठीक है, भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा तो मैं इस पर सोचता हूँ, विचार करता हूँ। तो फिर बिमला प्रसाद आए दोबारा, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार चैतन्य महापुरुष से पूछ के बताऊँगा, अगर उन्होंने कहा तो उसके बाद ही मैं आपको दीक्षा दूंगा। और फिर दोबारा आए बिमला प्रसाद उनसे बात करने के लिए कि दीक्षा चैतन्य महापुर ने क्या कहा उनको, तो उन्होंने कहा कि चैतन्य महापुर ने मना कर दिया, तो उनका हृदय टूट गया। तो उनको लगा कि अब मेरे जीवन जीने का क्या फ़ायदा, मैं इस प्राण को त्याग कर देता हूँ। तो कहने ही जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने गौर किशोर बाबू जी महाराज ने देखा इनमें इतनी सिंसियरिटी है, इनकी इनके भजन में इतना मग्न है ये, और वास्तविक जेन्युइन एक सच्चे शिष्य बनना चाहते हैं, तो उनको फिर वहाँ पर दीक्षा दी वर्षभानवी देवी दाई दास। तो उसके बाद फिर बाबू जी महाराज की इच्छा थी कि जब उनका जीवन का अंत समय आए, और एक वो एक चीज़ बहुत कहा करते थे हमेशा अपने प्रवचनों में, या प्रवचन तो नहीं कहेंगे, जिनसे भी बात करते थे कि हमेशा भोजन के पीछे मत भागा कीजिए, अगर भोजन के पीछे भागेंगे तो भजन भूल जाएंगे। और हमेशा अपने पास दो किताबें हमेशा रखते थे और कहते थे अगर किसी को कृष्ण के प्रति प्रेम चाहिए तो उसको दो आने में मिल सकता है। क्या, कौन सी दो किताबें? प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, क्योंकि इसमें सारे वेदों का और शास्त्रों का निचोड़ भी है और इन्हीं को पढ़कर कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। वास्तव में जिस भी हम वैष्णव सॉन्ग को पढ़ते हैं या वैष्णव गीत को पढ़ते हैं उसमें उस आचार्य की कृपा छिपी होती है, और जब हम उन गीतों को पढ़ते हैं और उनका मतलब समझते हैं, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, साथ में साथ उस आचार्य की भी कृपा आपके जीवन में मिलती है। और प्रभुपाद जी बताते हैं वैष्णव सॉन्ग जो वैष्णव गीत है इसमें और हरे कृष्ण महामंत्र में कोई भेद नहीं, हालांकि सब्स्टिट्यूट नहीं है कि सिर्फ हम वैष्णव सॉन्ग ही गाते रहे, तो लेकिन इसमें और हरे कृष्ण महामंत्र में कोई भेद नहीं है। और आज ये शिक्षा ऐसे ले सकते हैं प्रार्थना की जो किताब है नरोत्तम दास ठाकुर की, प्रेम भक्ति चंद्रिका भी, इसको हम पढ़ सकते हैं आज के विशेष रूप से आज के दिन, और ये गौर कृष्ण स्वामी जी को भी बहुत पसंद करेगा और हमें नरोत्तम दास ठाकुर की भी कृपा मिलेगी साथ में। और इसके साथ जब उनके जीवन में उन्होंने एक अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करी कि जब मेरा शरीर छूटे या देह त्याग करूं जब, तो मेरा देह नवदीप की अलग अलग सड़कों से लेके जाया जाए, घसीटा जाया जाए नवदीप की रज से। तो जब उन्होंने देह त्याग किया गौर कृष्ण बाबू जी महाराज ने, तो कई सारे जो महंत थे अलग अलग मठों के, उन्होंने ये सोचा कि अगर हमें ये गौर किशोरदास जी का शरीर मिल जाए और इनकी समाधि हमारे मठ में बन जाए तो बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारा चंदा मिलेगा। इसलिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए कि इनकी समाधि हमारे यहाँ पे बननी चाहिए, और आपस में लड़ रहे थे। सबका एक ही उद्देश्य था कि अगर इनकी समाधि हमारे मठ में बनेगी तो हमें बहुत चंदा मिलेगा। तो वहाँ पर फिर उनके एकमात्र शिष्य थे भक्ति साथ ठाकुर, वो वहाँ पर पहुँचे। तो उन्होंने पहले कहा कि मेरे गुरु के शरीर को ना घसीटा जाए, वो बिल्कुल दिव्य है। और दूसरा उन्होंने कहा कि इस शरीर को वही छू सकता है जिसने पिछले एक साल में कभी स्त्री का स्मरण नहीं किया, स्त्री संग नहीं किया। तो फिर उन्होंने कहा, वहाँ पे एक पुलिस वाला व्यक्ति भी आया था कि आप एक धर्म के नाम पे इतना क्यों लड़ रहे हैं, आपस में डिसाइड कर लीजिए। तो भक्ति साहब ने कहा कि आप कुछ मत कहिए, बस मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, इसका अगर ये जवाब दे देंगे तो मैं अपने गुरु के शरीर को छोड़ के चला जाऊंगा। तो पहले कहा कि एक साल तक अगर किसी ने स्त्री संग नहीं किया तो मेरे गुरु के शरीर को छू सकता है। तो किसी ने हाथ नहीं लगा, फिर कहा 6 महीने, फिर 3 महीने, फिर 1 महीना, फिर 3 दिन, फिर उसके बाद पिछली रात तक। तो ऐसा करने के बाद किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, वो समझ गए कि भक्ति ठाकुर इनके परम शुद्ध शिष्य हैं और ये ध्यान को ही मिलना चाहिए। फिर उन्होंने इनकी समाधि चैतन्य मठ में योगपीठ के पास ही उनकी समाधि स्थापित करी। सुशील गौर किशोरदास जी महाराज की जय। तो आज भीष्म पंचक का पहला दिन भी है, और बताया जाता है कि भीष्म देव ने आज से ही 5 दिन के लिए व्रत रखा था, और ऐसा पद्म पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि आज के इस आज से लेके जो 5 दिन का कोई व्रत करता है तो भगवान इस समय जो तपस्या करता है या भी जो भी आध्यात्मिक क्रियाएं करता है या कुछ भी वचन या अपने वाउज या इस प्रकार लेते हैं तो भगवान को बड़ा प्रसन्न करता है। और बताया जाता है कि हम जब इस व्रत की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले इसमें भीष्म देव का स्मरण करना चाहिए। तो भागवत के पहले स्कंद में जो 9वां अध्याय है उसमें भीष्म स्तुति आती है जिसमें भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को लेके जाते हैं ताकि वो भीष्मदेव से शिक्षा ग्रहण कर पाए। और तो 9वें अध्याय में हम इन भीष्म स्तुति को आज पढ़ के या कुछ उन पे श्लोकों पे स्मरण करके आगे इस व्रत का बताया जाती है पालन करना चाहिए। और जो भी आध्यात्मिक तपस्या है वो तो हमें आध्यात्मिक सुख देती ही है। भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं भागवतम के 2वें स्कंद में कि ऐसी तपस्या जो आध्यात्मिक है जो मेरी प्रसन्नता के लिए जाती की जाती है उस तपस्या में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, ऐसी तपस्या मुझसे अभिन्न है, है ना। तो जब हम ऐसी तपस्या लेते हैं कुछ ऐसे वचन लेते हैं जिसमें हम भगवान की प्रसन्नता के बारे में सोचते हैं, जिस प्रकार हम अधिक जप करें या अधिक श्लोक कुछ श्लोकों को याद रखें या ग्रंथों का अध्ययन बढ़ाएं या श्रवण करें या कुछ आध्यात्मिक क्रियाओं को बढ़ाएं, तो ऐसी तपस्या भगवान से अभिन्न है। ऐसी तपस्या करते हुए भी हमें भगवान का संग प्राप्त होता है। और तो इस तपस्या को करने का एक उद्देश्य भी होता है। कई बार भक्त तपस्या तो कर लेते हैं लेकिन बहुत परेशान हो जाते हैं। तो किसी भी आध्यात्मिक तपस्या के या फिर कुछ हम व्रत लेते हैं उसका उद्देश्य ये होता है कि हम कृष्ण स्मरण को बढ़ा सकें, भारी चेतना से ऊपर उठें और अपना कृष्ण स्मरण बनाएं। तो सारा पूरा एक आइडिया ये है कि हम और आध्यात्मिक बने जितने हम नॉर्मल आध्यात्मिक होते हैं, ट्राई टू बी मोर स्पिरिचुअल देन वन नॉर्मली इज, ताकि कुछ भक्ति में आगे जो बढ़ने का या कुछ ज़्यादा अधिक माला करने का जो आस्वादन है वो टेस्ट मिल सके, ताकि वो बाद में वो हैबिट भी बन सके। क्योंकि जो आध्यात्मिक टेस्ट है हमें आगे और प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए और टेस्ट लेने के लिए प्रेरित करता है। तो लेकिन जो भी तपस्या इसका रखने का उद्देश्य यह है कि हमारा कृष्ण स्मरण, कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है वो बढ़े। लेकिन कभी कभी ऐसी तपस्या रखते हैं कि कुछ कठिन व्रत भी ले लेते हैं लेकिन रखते रखते मन भी नहीं करता इसको छोड़े और करते करते इतना परेशानी भी बहुत हो जाती है। तो अपने हिसाब से इतना रखें जिससे बहुत ठीक है कुछ तो परेशानी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा कष्ट ना हो जाए मन में, कि इसे भगवान का स्मरण भूल जाए और सिर्फ सारा दिन मन में वही चिंतन चला जाए चलता रहे। तो तपस्या का उद्देश्य है कि हमारा कृष्ण स्मरण ज़्यादा बढ़े। और भूख प्यास से या फिर कुछ लोग ऐसे भी व्रत लेते हैं, इसमें एक चीज़ और भी बताई जाती है, अगर किसने पूरे कार्तिक में मतलब अन्न खाया है तो इस 5 दिन थोड़ा अन्न छोड़ने का प्रयास भी कर सकता है। हालांकि साथ में ये भी लिखा है कि ये ऑप्शनल है, इफ़ वन इज कैपेबल, अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो कोई कुछ ऐसा कंपल्सरी नहीं है। और इसमें यह भी बताया गया कि अगर चतुर्मासे में अगर कुछ उसका जो फल है वो कार्तिक मास के फल को कार्तिक मास में जो प्रयत्न करने से उसका फल भी प्राप्त होता है, अगर कार्तिक मास के व्रत रखने में भी कुछ त्रुटि हो जाए तो बीज पंचक में कुछ व्रत लेने से वो भी त्रुटि पूरी हो जाती है। तो आज भीष्म पंचक के बारे में इतना ही बताएंगे। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल ऑस्टेरिटीज, जिन भी आप तपस्या करें वचन लें भगवान आपके इसको पूरा करें और आप सब कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ें। तो अभी हम श्रील प्रभुपाद लीला में से हम कुछ पाठ करना चाहेंगे। हाँ, तो प्रभुपाद जी अभी हैं बॉम्बे में और जब भक्तों को पता लगा कि प्रभुपाद जी अभी बॉम्बे में हैं तो कोई भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहता कि प्रभुपाद से ना मिले, तो हर कोई बॉम्बे जाना चाहता है। तो हिज लॉर्डनेस भक्ति माधुरी गोविंद महाराज बता रहे हैं कि जब हम मंदिर में रहते थे और जैसे ही एक प्रभुपाद जी का कोई पत्र भी आता था कभी, तो जितने भी भक्त थे सारे अपने मंदिर के सारे कामों को छोड़कर उस पत्र को सुनने के लिए आ जाते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी का संग या उनके शब्द है इतने दुर्लभ होते थे सुनने के लिए, और उनको देखना तो और अलग बात है। तो फिर जैसे ही लेटर आता था तो सब भक्त बैठते थे, एक भक्त पढ़ता था और सब भक्त उसको सुनते थे और उसको ऐसे सुनते थे जैसे कि प्रभुपाद साक्षात बोल रहे हैं, और उन लेटर्स की अभी तक उनकी वर्शिप की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। तो जो बुक भागवत है और ग्रंथ भागवत है दोनों के वचनों में ही से ग्रंथ निकलते हैं, दोनों ही ग्रंथ हैं, तो प्रभुपाद के जो वचन है वो भी ग्रंथ है और जो हमारे पास सामने साक्षात भागवतम ये भी एक ग्रंथ है। तो मैं जब ये प्रसंग पढ़ रहा था तो मुझे दो भक्तों का स्मरण हुआ जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। मैं इनके बारे में पढ़ रहा था कुछ रिसेंटली ही कि किस प्रकार की भक्तों में भावना होती थी, वो किस प्रकार सेवा की तीव्रता अपने जीवन में लेके आना चाहते थे। तो पहले भक्त हैं भूरीजन प्रभु, तो मैंने माय ग्लोरियस स्पेशल मास्टर में इनके बारे में पढ़ा। और तो इनको जब प्रभुपाद ने कहा कि आप जापान जाके सेवा कीजिए, वहाँ पे बलिमर्दन स्वामी महाराज उनको मिले, और जिस दिन मिले और प्रभुपाद के कहने पे चले भी गए जापान, और जब वहाँ पे गए तो उसी दिन बलिमर्दन स्वामी को हांगकांग जाना था। तो उन्होंने कहा कि अब आप संभालिए, मैं जा रहा हूँ। वो बिल्कुल अकेले, अभी क्या करें, जापान में पहली बार आए हैं, शायद इंग्लिश यहाँ पे कोई बोलता नहीं है, तो बहुत। और कहा कि यहाँ पर एक बस रूम है इस बिल्डिंग के अंदर, टॉप फ्लोर है, वहाँ पर जाके रहिए बस, और कुछ जो भी हो सके आप यहाँ पर प्रचार कीजिए। तो क्या समर्पण की भावना थी, तो यहाँ पे प्रभुपाद के शिष्य सीखना चाहिए। और वहाँ पे उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। फिर उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि मुझे विवाह करना है। तो उस समय एक लॉस एंजलिस में एक माता जी थी, वो ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस थी। तो वो वहाँ पे लॉस एंजलिस के सामने एक हॉलीवुड है, तो हॉलीवुड में एक्टिंग करने आई थी। तो बहुत परेशान थी अपने जीवन में, तो उसने सोचा कि उसने देखा कुछ हरे कृष्ण भक्तों को देखा, तो उनसे संग करना शुरू किया और 6 महीने तक लॉस एंजलिस मंदिर में रहने लगी और वो भक्त बन गई। तो प्रभुपाद ने फिर उनको नाम दिया जगत तारिणी माता जी। तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि मेरा एक शिष्य है जापान में, वो अकेला प्रचार कर रहा है, आप उनके साथ जाके क्यों नहीं प्रचार करते। और वो 6 महीने में इतने समर्पित बन गई थी। वो एक एक्ट्रेस थी बहुत अच्छी, ऑस्ट्रेलियन बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, तो सब कुछ छोड़ के प्रभुपाद के कहने पर चली गई उनके पास जापान पे। फिर जापान में कुछ प्रयास किया, उन्होंने देखा यहाँ पे तो भौतिकता बहुत ज़्यादा है। फिर हांगकांग में उनको बाद में इनविटेशन मिला, तो वो हांगकांग अपनी पत्नी के साथ चले गए, जगतानी माता जी के साथ। अब हांगकांग में भी देखा उन्होंने, यहाँ पे तो भौतिकवादिकता बहुत ज़्यादा है, और अलग अलग जगह पे प्रचार करने जाते थे। और एक समय ऐसा भी आ गया कि एक समय उनके पास कुछ पैसे ही नहीं थे। आज हमारे पास कुछ खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है, अब आज क्या खाएंगे हमें कुछ नहीं पता। तो फिर वो गए, बाहर निकले, तो फॉर्चुनेटली उनको एक कोई भारतीय व्यक्ति मिल गया वहाँ पर। तो उसने उसको ऑफर किया, उन्होंने ऑफर किया आप मेरे घर में आके कुछ खा लीजिए, कुछ ग्रॉसरी उनको लेके उनके घर में दे दी। तो इस कंडीशन में रहते थे। और दूसरे थे ऐसे शिवानंद सेन। प्रभुपाद की हमेशा इच्छा थी कि लंदन में जाके कोई प्रचार करे। तो उन्होंने पहले एक भक्त को कहा कि आप लंदन जाइए, मेरी इच्छा है कि यहाँ पर प्रचार होना चाहिए। तो उन्होंने मना कर दिया। प्रभुपाद का ये तो मना कर रहे हैं, ठीक है मैं स्वयं जाऊँगा यहाँ पर प्रचार करने के लिए। फिर बाद में उन्होंने एक शिवानंद से कहा कि आप भी जाइए लंदन। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है कि मैं जर्मनी थोड़ी जानता हूँ, तो मैं जर्मन जाके प्रचार करना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने कहा नहीं, अभी आप रुक जाओ, अभी आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। तो वो लिख रहे हैं शिवानंद सेन जी कि मुझे लगा प्रभुपाद ने इसलिए मना किया कि मैं शायद अभी इतना परिपक्व नहीं था। तो और फिर इतने में फिर प्रभुपाद ने कुछ अपने गृहस्थ भक्तों को भेजा लंदन में। और फिर दोबारा शिवानंद सेन ने पूछा कि मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने इस बार कहा कि ठीक है आप चले जाइए, और कुछ कुछ उनको निर्देश दिए, इन निर्देशों का पालन कीजिए। तो वो पहले बर्लिन गए एक शहर में, वहाँ पे देखा कुछ प्रचार करने का प्रयास किया। और फिर बाद में प्रभुपाद ने एक जर्मन व्यक्ति और भी भेजा वहाँ पर, तो उनके साथ रह के प्रचार करना शुरू कर दिया। फिर एक और व्यक्ति बाद में प्रभुपाद ने अपने भक्त को भेजा। फिर वहाँ पे देखा प्रचार नहीं हो रहा था, तो फिर उन्होंने कहा कि हम हैम्बर्ग में जाके प्रचार करते हैं, वो वहीं पर एक और दूसरा शहर है। और वो सिर्फ 18 साल के 17 साल के बालक थे शिवानंद सेन, तो ज़्यादा उम्र नहीं थी बस, और बस लेकिन एक उत्साह था प्रभुपाद की सेवा करने का। फिर दो भक्त में आपस में कुछ हो गया, तो वो दोनों चले गए, वो अकेले थे। तो प्रभुपाद यहाँ से कंपटीशन करवाते थे जब तक तीनों भक्त साथ में थे, कि यहाँ पे लंदन में वो इतना प्रचार कर रहे हैं, आप शिवानंद सेन यहाँ पे क्या करे, कुछ करा ही नहीं अपने जर्मनी में। वो यहाँ पे जर्मनी को कहते थे और लंदन में कहते थे शिवानंद सेन देखो इतना अच्छा कर रहे हैं वहाँ पर, आप कुछ कर नहीं रहे, एक सेंटर नहीं खुला अभी तक आपसे, अब सिर्फ आपको सिर्फ जॉर्ज हैरिसन मिला अभी तक। तो इस प्रकार एक आध्यात्मिक कंपटीशन आपस में जगाते थे प्रभुपाद भी, और भक्तों में भी इतनी सेवा की भावना थी कि वो प्रभुपाद के लिए कुछ भी करना चाहते थे, है ना। और गोविंद देवी दासी माता जी बताती हैं कि प्रभुपाद के पास एक ग्लोब रहता था शुरू के समय में, हमेशा वो हमेशा ये सोचते रहते थे कि कहाँ पर किस भक्त को भेजूँगा। तो एक बार एक दिन ऐसे ही ग्लोब को देख रहे थे और सोच रहे थे कि सामने ब्राह्मण थे, ब्राह्मण मैं आपको अब रशिया में भेजूंगा, और फिर सामने गर्गुनी आपको मैं चाइना भेजूंगा। तो गोविंद देवी दासी माता जी बताती हैं कि प्रभुपाद सबसे ज़्यादा सोचते थे एक देश के बारे में जहाँ पर प्रचार होना चाहिए, वो रशिया के बारे में बार बार सोचते थे। तो इस प्रकार आगे भी इसी प्रसंग में आएगा कि कैसे प्रभुपाद अलग अलग भक्तों से ये इन्विटेशन ले रहे हैं, कि कोई कह रहा है मैं श्रीलंका जाना चाहता हूँ, कोई कह रहा है पाकिस्तान, कोई कह रहा है ढाका जाना चाहता हूँ। तो अलग अलग देशों में भी यहाँ पर प्रभुपाद को लेटर्स मिलेंगी और वो परमिशन ले रहे हैं, प्रभुपाद मैं इस देश में प्रीचिंग करना चाहता हूँ। तो ये देख के इतना पढ़ के इतना अच्छा लग रहा था कि क्या स्पिरिट होती थी भक्तों के अंदर। और इस संदर्भ में आज प्रभुपाद कुछ टेंपल कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी कुछ निर्देश देंगे, तो उसको पढ़ना शुरू करते हैं। श्रील प्रभुपाद से सीधे आदेश प्राप्त करने की आशा में भक्तों का बंबई आना जरूरी रहा। अब वो भक्त प्रभुपाद से संग करना चाहते थे, तो इसलिए सभी भक्त बॉम्बे में आना चाहते थे। बहुत कुछ प्रभुपाद के सचिव के माध्यम से हो सकता था। और आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, जैसे वार्तालाप से बचा जा सकता था। मतलब प्रभुपाद जी ये प्रयास करते थे कि बहुत सारे काम उनके जो सेक्रेटरी वही कर लें, कि बहुत सारे लोग आते थे और पूछते थे प्रभुपाद आप कैसे हैं, तो सबसे बात करना, सब पूछते थे एक ही प्रश्न, हाउ आर यू फीलिंग प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जाते बहुत सारी डीलिंग मेरा सेक्रेटरी कर ले और कुछ डायरेक्ट डीलिंग खुद करते थे प्रभुपाद। फिर भी कभी कभी प्रभुपाद कुछ शिष्यों से सीधे मिल लेते थे। और प्रभुपाद कुछ शिष्यों से सीधे इसलिए भी मिलते थे क्योंकि कुछ उनके जो सीनियर डिसाइपल्स थे विशेष रूप से जो जिम्मेवारी उठा रहे थे ताकि उनको और ट्रेन कर सकें, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए इस सीमित समय में जितना मैं प्रशिक्षण दे सकूँ। तो एक लीडरशिप प्रिंसिपल है, ट्रेनिंग द ट्रेनर, कि जो आगे लोगों को ट्रेनिंग देगा उसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर आगे बहुत सारे लोग निर्भर रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी अपने जो गंभीर भक्त हैं या फिर जो सीनियर भक्त हैं जो जिम्मेवारी उठा रहे हैं, ऐसे भक्तों को विशेष समय देते थे। मैं ऐसे ही प्रभुपाद जी के एक लेटर्स मैं पढ़ रहा था, एक 1975 की, ऐसे एक मैंने महीने की लेटर उठाई तो मैंने देखा कि आज एक लेटर लिख रहे हैं, आज एक ही दिन में जर्मनी में लिख रहे हैं, एक लेटर लिख रहे हैं रशिया में लिख रहे हैं, एक लेटर लिख रहे हैं जापान में लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं हांगकॉन्ग में। तो ऐसे 8-10 पत्र एक दिन प्रॉपर लिख रहे हैं, फिर अगले दिन और दूसरे देशों में लेटर्स लिख रहे हैं, फिर तीसरे चौथे दिन उनसे फॉलोअप कर रहे हैं, हफ्ते भर बाद सबसे फॉलोअप ले रहे हैं, सबको कुछ कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसका जवाब दे रहे हैं। तो इतना अच्छा एक ट्रेनिंग करना तो एक अलग बात है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ पूरा फीडबैक, पूरा रिपोर्ट्स, पूरा प्रॉपर लेते थे, बिल्कुल पक्के समय पर उनकी लेटर जाती थी, मतलब प्रॉपर लिखने का प्रयास करते थे और पूरा फीडबैक लेते थे। किसी को कहीं भी कोई जर्मनी में जैसे शिवानंद सेन गए तो पूरा एक कन्वर्सेशन चलता था, चाहे 6 गृहस्था भी गए लंदन में तो हर महीने प्रभुपाद की एक लेटर आती थी उनको, शिवानंद सेन को भी हर महीने एक लेटर आती थी। तो उस लेटर के आधार पर वो आगे कार्य कर पाते कि प्रभुपाद का एक संदेश है इसको पूरा करते हैं, और वो पूरी स्थिति बताते थे कैसे प्रचार चल रहा है, और फिर प्रभुपाद से संदेश पूछते थे कि यहाँ हम ये चीज़ें करना चाहते हैं, फिर प्रभुपाद कन्फर्म करते थे आप ये चीज़ें करो। तो इस प्रकार प्रभुपाद अपने वरिष्ठ भक्तों को जो उनके सीनियर डिसाइपल थे उनको इस प्रकार ट्रेन करते थे पर्सनली, और ये निश्चित करते थे उनको समय मिले और वो जिम्मेवारी और उठाएं। तो आगे वे अभी भी कम से कम अपने सचिव के माध्यम से अपने आंदोलन और उसके नेताओं के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में दखल देते थे। डाक द्वारा उन्हें मालूम हुआ कि अत्रेय ऋषि की योजना कराची पाकिस्तान में कृष्ण भावित आंदोलन आरंभ करने की थी। अत्रेय ऋषि थे प्रभुपाद जी के शिष्य, उनकी इच्छा थी कि हम कराची में और पाकिस्तान में जाके कृष्ण भावित आंदोलन शुरू करें। तो और इस बार एक बार ऐसी प्रभुपाद से प्रभुपाद बता रहे थे, हमारे देखिए यहाँ पे मंदिर है, इधर भी मंदिर है, इस जगह पर भी मंदिर है, जापान में भी मंदिर है, हांगकॉन्ग में भी मंदिर है। तो एक व्यक्ति ने पूछा ऑडियंस में, प्रभुपाद जी आपका पाकिस्तान में मंदिर है क्या? तो उन्होंने कहा ब्रह्मानंद हमारा पाकिस्तान में मंदिर है क्या? तो ऐसे प्रश्न पूछा प्रभुपाद ने। तो ब्रह्मा ने कहा प्रभुपाद नहीं हमारा मंदिर तो नहीं है। ओके ब्रह्मानंद यू गो पाकिस्तान। ओ उसके बाद पाकिस्तान को भेज दिया, वो चले भी गए वहाँ पे जाके, उनको बहुत कष्ट भी हो गया कि एक बार जब बॉर्डर में खड़े थे तो उनको लगा कि ये तो अमेरिकी व्यक्ति हैं, जासूसी व्यक्ति होंगे, तो उनको पिस्तल रख दिया, बोलो आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले हरे कृष्णा 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 हरे, ठीक है इस बार छोड़ रहे हैं आप चले जाओ। तो ऐसे और प्रभुपाद को बड़ा ऐसा कई बार खतरे का सामना भी करना पड़ता था। ऐसा एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ा कि वहाँ पर कई अमेरिकी लोगों को मार दिया, तो प्रभुपाद बड़े संकट में भी आ गए थे। तो बड़े खतरे खेल के भी प्रभुपाद के शिष्य प्रचार करते थे। तो उन्होंने यदुवर की बनाई हुई एक नई फिल्म को देखा और उसे स्वीकृति दी। यदुवर वही हैं जिन्होंने भी हरे कृष्णा द स्वामी द मंत्र एंड द मूवमेंट हु स्टार्टेड ऑल ये मूवी बनाई थी और उसे स्वीकृति दी। वे हंसदू स्वामी से मिले और उन्होंने उन्हें श्रीलंका में धर्मोपदेश विकसित करने के लिए अनुरोध किया। और उन्होंने प्रभा विष्णु को ढाका बांग्लादेश में जाकर धर्मोपदेश करने का हृदय में समर्थन दिया। उन्होंने हैदराबाद में जोर दोर धर्मोपदेश की आवश्यकता के बारे में सुना और जब उनके शिष्य श्रीधर स्वामी उनसे मिलने आए तो प्रभुपाद ने उन्हें हैदराबाद जाने का अनुरोध किया। उनकी भेंट लोकनाथ स्वामी से हुई तो उन्होंने भारतीय गांव में बैलगाड़ी से जाकर धर्मोपदेश करने के उनके कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया। लोकनाथ प्रभुपाद के लिए द परफेक्शन ऑफ योगा का मराठी अनुवाद लाए थे और प्रभुपाद लोकनाथ महाराज से उसे ऊंची आवाज में पढ़वा कर कुछ देर तक सुनते रहे। यद्यपि उन्होंने कहा कि वे मराठी भाषा नहीं जानते थे, मतलब द आर्ट ऑफ परफेक्शन एक किताब लेके आए थे, क्या था परफेक्शन ऑफ योगा सॉरी, और मराठी में किताब थी। प्रभुपाद उसको बार बार सुनते थे और प्रभुपाद अपनी किताबों को बहुत सुनते थे और बहुत अद्भुत रहते थे कैसे ये किताबें आई हैं। निश्चित रूप से किताबों का कृष्ण ही लिखा है, कृष्णा इज ऑथर इज बुक। तो आगे जब इस्कॉन बम्बई में एक पुजारी ने जाना चाहा कि उसके पास तो शालिग्राम शिलाएं थी वे प्रमाणित थी या नहीं, तो प्रभुपाद उनको देखने को सहमत हो गए और उन्होंने पुष्टि की वे प्रमाणिक थी और पुजारी का परामर्श था कि उनकी उपासना कैसे करनी चाहिए। प्रभुपाद कुछ प्रबंध संबंधी मामलों से बचने की कोशिश करते थे, जैसे बम्बई के निर्माण कार्य में विलम्ब का मसला, किंतु ऐसा नहीं हो पाता था। मतलब कि प्रभुपाद को हमेशा एक चिंता रहती कि बम्बई के मंदिर में इतना विलंब क्यों हो रहा है, तो उनको डायरेक्ट डील करना पड़ता था वहां पर। उन्होंने चलते रहने वाले काम की आवाज सुनाई देती थी, कभी कभी वह शोर में बदल जाती थी, किंतु वो उन्हें सबसे बड़ी चिंता थी कि वह काम के धीमेपन की थी। तो प्रभुपाद को था कि ये काम इतना धीमे क्यों हो रहा है, कंस्ट्रक्शन इतना धीरे क्यों हो रही है। कभी कभी वे घंटों मौन बैठे रहते और फिर अपने सेवक या सचिव से कहते कि वे निर्माण में ऐसे विलंब से बहुत चिंतित हैं। इसमें मैं थोड़ा विचार कर रहा था कि प्रभुपाद घंटों घंटों ही बैठे रहते चुपचाप एक जगह पे कि मंदिर का निर्माण इतना देरी से क्यों हो रहा है। हमने ये देखा कि इस गोपाल कृष्ण महाराज जब भी मंदिर में आते हैं, रोहिणी मंदिर में, या जब भी हमसे मिलते हैं तो उनको एक ही चिंता रहती है कि रोहिणी मंदिर बन क्यों जाना। जब भी आते हैं मंदिर में महाराज एक क्लास लेते हैं, एक मीटिंग रखते हैं, तो महाराज हमेशा प्रयास करते हैं कि एक साल के अंदर मंदिर बना दो या 15 महीने में अगले कार्तिक तक मंदिर बना दो। तो पहले 2016 का कार्तिक था, फिर 17 का कार्तिक, 18 का कार्तिक, बना चुके हैं 19 कार्तिक तक तो बना ही दो उसको। तो और जब भी मिलते हैं महाराज कहते हैं आप सब कुछ नहीं कर रहे, सब लेजी हो, मंदिर तक तो बन जाना चाहिए। अब गुरुकुल बन गया यहाँ पर बहादुरगढ़ बन गया, तो सबको पुश करते हैं महाराज की जल्दी जल्दी मंदिर बने और बहुत चिंता रहती है। और इसी प्रकार भी प्रभुपाद जी अपने भक्तों को ऐसे कहेंगे। प्रभुपाद ने कार्य के प्रभारी भक्तों से कहा, तुम लोग निष्ठावान कार्यकर्ता तो हो, आप सब सिंसियर हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप में कोई अकल नहीं है आप में कोई बुद्धि नहीं है, आपको जल्दी आपकी सिंसियरिटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन यू आर नॉट इंटेलिजेंट आप बुद्धिमान नहीं हो। मैं देख रहा हूं कि निर्माण कार्य ठीक से नहीं चल रहा है, क्या मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है मंदिर नहीं बना तो मैं भी बंद कर लेता हूँ। कभी कभी भक्त कहते हैं ठीक है जब भगवान की इच्छा होगी तब बन जाएगा, भगवान किसी को भेजेंगे एक भी बार में मंदिर बना देगा, ऐसे भी सुनने को आता है, ये तो भगवान की इच्छा पे निर्भर करता है। तो प्रभुपाद कहते हैं क्या मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, किंतु मैं विवेकपूर्ण व्यक्ति हूँ, आई एम ए सेंसिबल मैन। प्रभुपाद कह रहे हैं मैं हर चीज़ समझता हूँ, क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, मैं अपनी आंखें कैसे बंद कर सकता हूँ। सभी लोग अपने बहाने बना रहे हैं, हर कोई बहाने बनाता है कि प्रभुपाद आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया। प्रभुपाद ने विभिन्न नेताओं का विश्लेषण किया और प्रत्येक में कमियां जो जितने भी लीडर्स थे उनका प्रॉपर ने गणना करी, विश्लेषण किया, एनालाइज किया, कहाँ पे कौन गलती क्या कर रहा है, किसकी क्या कमी हो रही है, और कमी पाने पर उन्होंने निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह कहा कि वे निर्माण करने में तेजी लाने में असक्षम है। और देखा कि अलग अलग भक्तों से, जो लीडर्स से बात करके, कि ये इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है, कि ये इतनी योग्यता नहीं है कि ये जल्दी काम करा सकेंगे, फिर कहा कि कोई और ढूंढो। जब तमाल कृष्ण ने सुझाव दिया कि हो सकता है कि उन्हें किसी ऐसे आजीवन सदस्य से परामर्श लेना चाहिए जो मंदिर निर्माण में विशेषज्ञ हो, तो प्रभुपाद ने इस सुझाव का समर्थन किया। अतएव श्रीमान मोहता को इस जो इंजीनियर थे, एक आजीवन सदस्य भी थे, प्रभुपाद से मिलने के लिए उनको बुलाया। तो फिर एक लाइफ मेंबर को बुलाया, तमाल कृष्ण ने ऐसा एक आदेश, प्रभुपाद को सुझाव दिया कि वो विशेषज्ञ हैं, इंजीनियर भी हैं, वो जल्दी मंदिर निर्माण करवा देंगे। अभी बहुत हास्यप्रद अभी चीज़ आएंगी जो एक कहने में लग सकता है एक सामान्य बात में इम्प्रैक्टिकल, लेकिन प्रभुपाद ने उसको बहुत अच्छे से करके दिखाया। उस समय निर्माता कंपनी मांग कर रही थी कि उन्हें पिछले सारे बिलों का भुगतान कर दिया जाए इसके पहले कि वह कार्य आगे बढ़ा सके। जब हम मंदिर भी बना रहे हैं, हम देख रहे हैं रोनी मंदिर, तो क्या होता है कि कुछ भी एक बड़ा काम शुरू करना होता है, जैसे हमें अभी 6 लिफ्ट लगानी थी, तो बड़े काम में बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। जैसे अगर कंस्ट्रक्शन कर दी, उसके बाद फिनिशिंग चल रही है, फिनिशिंग में कई सारे बड़े काम होते हैं, तो ऐसे में समस्या क्या आती है कि एक बहुत बड़ा बिल चाहिए होता है। हमारी रेगुलर कलेक्शन एक मान लीजिए 50-60 लाख ऐसे कुछ है, लेकिन उस बड़े काम में आपको 1.5 करोड़ हर महीने चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि सारे पेंडिंग्स हो जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि जो लेबर्स होती हैं उनको पैसा नहीं मिलता, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लेबर को पैसा नहीं देता, तो क्या होता है लेबर छोड़ के चली जाती है। तो अभी हमारे मंदिर में ऐसे ही है, अभी जो पत्थर लगा रहे थे तो पत्थर लगाने का मेरे ख्याल से 7-8 जितने 3-4 करोड़ का जो भी खर्चा था, तो लगाने शुरू ही किए थे, लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट देख के इतने सारे पत्थर चाहिए थे, तो लगाना और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करना एक समय तो हमारे लिए संभव नहीं था, तो सारे पत्थर वाली लेबर चली गई अभी। तो अभी लिफ्ट लगानी थी, तो 2 लिफ्ट लगी थी, तो उसमें ही इतना खर्चा था, तो वो लिफ्ट बीच में कार्य बंद हो गया। तो क्या होता है कि जब तक पुराने बिल्स पेंडिंग नहीं होते, कभी कभी पुराने बिल्स 1-2 करोड़, 3 करोड़ ऐसे हो जाते हैं, तो फिर आगे काम नहीं बढ़ पाता। पहले वो चुकाओ, फिर और नया इकट्ठा करो, पॉजिटिव बैलेंस होगा तो उसके बाद काम शुरू होगा। तो अब फिर ठीक है, वो नया इंजीनियर तो ढूंढ लिया प्रभुपाद ने, अब दिक्कत क्या है कि पुराने बिल्स इतने सारे थे, कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रखी थी, तो पहले पुराने बिलों को भुगतान कीजिए, उसके बाद आगे नया काम शुरू करेंगे। फिर आगे प्रभुपाद ने कहा, किंतु श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वे किसी बिल का भुगतान नहीं करेंगे, कोई बिल नहीं देंगे आपको जब तक कि कार्य पूर्ण ना हो जाए, तब तक कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, उसके बाद ही भुगतान किया जाएगा। पहले पूरा मंदिर बना दो, इकट्ठा पेमेंट ले लेना मुझसे तो उन्होंने कहा ये कैसे, ये थोड़ा ऐसे बात होती है, अब पैसा चाहिए होता है, लेबर को देना पड़ता है, किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा ऐसे ही होगा काम, पूरा मंदिर बना दो, आपका पेमेंट हो जाएगी, इसकी गारंटी है, इसकी चिंता मत करना। तो फिर आगे, यदि भी कुछ भक्त चाहते थे कि कंपनी को कम से कम कुछ आंशिक भुगतान तो कर दिया जाए, चाहे पूरी पेमेंट ना करो, जो पेंडिंग है उसका थोड़ा सा पैसा दे दो, जिससे कि कार्य सरलता से आगे बढ़ता जाए। शिवान मोहता को प्रभुपाद का तर्क पसंद आया, लेकिन जो एक्सपर्ट इंजीनियर थे मोहता जी, जो लाइफ मेंबर थे, उनको प्रभुपाद की बात बड़ी अच्छी लगी, और वे कंपनी से उसी आधार पर बात करने लगे। फिर जिस जो कॉन्ट्रैक्टर था उससे, जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी थी उससे वैसी बात करने लगे। परिणाम ठीक रहा, कंपनी मान गई, ठीक है हम पूरा मंदिर बना देंगे, उसके बाद आप अपने भुगतान कीजिएगा। तो प्रभुपाद की जो बार्गेनिंग की डीलिंग थी, आप जो इस प्रकार की मैनेजर डीलिंग थी, बड़ी एक्सपर्टीज है। जैसे डाई निपोन में जब प्रभुपाद जी उस भगवद्गीता की प्रकाशन करना चाहते थे, तो पहले कुछ प्राइस रखा और निर्धारित हो गया, लेकिन प्रभुपाद उस प्राइस, मान लीजिए 125 रुपये कुछ था प्राइस, तो उसको और कम करा के 90 रुपये करवा दिया। एक निर्धारित प्राइस हो गया, सब में बात हो चुकी है, ठीक है इस प्राइस में बनाएंगे, लेकिन प्रभुपाद ने उस डीलिंग में पता नहीं ऐसे बात करी, तो वो भी हैरान हो कि हमने पैसे कैसे कम कर दिए। सब कुछ निर्धारित हो चुका था, डिसाइड था कि इतने में बनाएंगे, फाइनल मीटिंग थी, और फाइनल मीटिंग कई सारी हो भी चुकी थी, लेकिन प्रभुपाद जब आए फाइनली एक लास्ट मीटिंग में, तो प्राइस और कम करा दिया। तो प्रभुपाद की इस प्रकार की कई डीलिंग्स, बड़ी एक्सपर्टीज होती थी। आगे, और प्रभुपाद को इससे राहत मिल गई, तब प्रभुपाद रिलीव्ड हो गए। इस तरह यद्यपि प्रभुपाद पूरी तरह से अवकाश लेना चाहते थे, किंतु उन्हें नहीं लगता था कि इस्कॉन के प्रबंध से वे अपने आप को कभी अलग कर सकेंगे। तो ये प्रभुपाद के विषय थे, हमेशा प्रभुपाद कहते कि अगर शिष्य एक बार किसी शिष्य ने पूछा कि गुरु जी आप इतने अभी वृद्ध हो गए हैं, अब तो आपको आराम करना चाहिए। यार जब तक एक उदाहरण दिया उन्होंने कि जब तक बेटा नलायक रहता है तो पिता को मेहनत करनी पड़ती है ज़्यादा। तो अगर बेटा नलायक निकले तो पिता को ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपना भी संभालना, घर भी संभालना, बेटे को भी संभालना। तो यद्यपि शील प्रभुपाद का कोई नियमित डॉक्टर नहीं था, समय समय पर एक कविराज आकर उनके रोग का निदान करते थे और दवा दे जाते थे, किंतु प्रभुपाद उसी गंभीरता से नहीं लेते थे, उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। वे इन कविराजों को बहुत योग्य नहीं समझते थे, उनकी कड़वी दवा होती थी और उनका बड़ा बुरा असर होता था। तो कविराज आते बड़ी कड़वी कड़वी दवाई देते थे, उसका शरीर पर बड़ा असर खराब भी होता था, इसलिए प्रभुपाद उसको बंद कर देते थे लेना आयुर्वेदिक दवाई। इस बात कृष्ण के अधीन थी, हर बात कृष्ण के अधीन थी और कोई डॉक्टर उसे नहीं बदल सकता था। जब प्रभुपाद भी अंतिम समय में थे तो प्रभुपाद कहते मेरी एक ही दवाई है, क्या है, अमाला हरिनाम, एक यही है विलास, मेरी एक ही दवाई है, वो क्या, हरिनाम। आप सिर्फ हरिनाम कीजिए, इसी से मैं ठीक हूँगा, कृष्ण चाहेंगे तो ठीक होंगे। प्रभुपाद आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं के अपेक्षित गुण दोषों का वर्णन करते थे, किंतु अन्य सांसारिक बातों की तरह उन्हें दवा में भी कोई रुचि नहीं थी। एक लास्ट पैराग्राफ बस। वे समाचार पढ़वाकर सुनने लगे थे, अधिकांश समाचारों में कांग्रेस दल के पतन और जनता दल के सुधार संबंधी वायदों का वर्णन होता था। समय समय पर प्रभुपाद टिप्पणी करते, ये बदमाश लोग यहाँ आ जाते हैं, वही गड़बड़ करते हैं। एक बार उन्होंने टिप्पणी दी, मंद सुमंद मतिया, उनके विचार बहुत ही गंदे हैं, उनके धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक सभी विचार निंदनीय हैं। प्रभुपाद का निष्कर्ष था, ये मूर्ख और बदमाश जो कुछ कर रहे हैं उसी से समाचार पत्र चलते हैं। तो प्रभुपाद बिल्कुल डायरेक्ट बोल रहे हैं। प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण और अन्य से कहा कि वे पत्र और लेख लिखकर समाचार पत्रों में छपी कुछ आलोचनाएं का उत्तर दें। एक समाचार पत्र के संपादकीय में लेखक ने औपचारिक शिक्षा की यह कहकर आलोचना की कि उससे बच्चों का मन प्रदूषित होता है। लेखक ने बल देकर लिया, शिक्षाविदों अथा अनुसंधायकों को इस प्रकार पर विचार देना चाहिए कि कुछ उपचार सुझाव दे। प्रभुपाद ने कहा, यह बदमाश नहीं जानते कि नास्तिकता और नास्तिक शिक्षा से यही होता है। जो शिक्षक सुझाव दे रहे थे वे स्वयं खराब हैं और वे ही नेतृत्व कर रहे हैं। आजकल हम देखते हैं, जैसे हम कभी कॉलेज पिचिंग भी करते हैं, तो जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका ये प्रभाव होता है कि हम जैसे कभी कॉलेज पिचिंग करते हैं तो वहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो आजकल ज़्यादा संख्या में दिखती हैं, स्मोकिंग करते हुए दिखते हैं या कम कपड़ों में, तो सारी। और जब हम या कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी या किसी आध्यात्मिक प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं तो किसी कोई विचार नहीं है, कोई नहीं सुनना चाहता, सबको लगता है तो आउटडेटेड है, ये तो मैथोलॉजी है, ये तो वो लोग जाते हैं तो बड़े परेशान हैं। तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, हम अपने आप में खुश हैं। तो जो भौतिक शिक्षा से लोग और खराब हो रहे हैं, प्रभुपाद इसी पॉइंट को बता रहे हैं। इसका कारण है, हराओ अभत्तस्य कुतो महत गुना मनोरथे नास्ति धावतो भई। कृष्ण चेतना के बिना कोई शिक्षा नहीं हो सकती, कोई अच्छे गुण नहीं आ सकते। आप यह नहीं जानते और आप अरण्य रोपण दे रहे हैं। सारी शिक्षा और इसका प्रचार संसार को नास्तिक बनाने के लिए है। यद्यपि ईश्वर का सबसे वैज्ञानिक ज्ञान भगवद गीता में निहित है, उन्हें लिखो और थप्पड़ लगाओ, आप नहीं जानते। तो इस प्रकार प्रभुपाद बड़ा हैवीली यहाँ पर न्यूज़पेपर चैनल्स में जो दिखाया जाता है या भौतिक शिक्षा को जिस प्रकार से आगे प्रोत्साहित हो रही है इस पर जोर देते हैं। यहीं पे हम इसको विराम देना चाहेंगे, किसी को भी प्रश्न हो तो कोई पूछ सकते हैं, क्योंकि 9 बज चुके हैं। और सो आज भीष्म पंचक का पहला दिन है, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, आपका ये व्रत सफल रहे और ये जो व्रत का पालन आपको जीवन में कृष्ण की तरफ और आगे लेके जाए, कृष्ण भक्ति शुद्ध भक्ति की तरफ आप और आगे बढ़े। हरे कृष्ण, जयगुरु श्री प्रभुपाद की जय।
Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Pashyata Deshitadine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gora Bhakta Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare Krishna